आयुब अध्याय 20। अब सोपर तीसरा मित्र अपने ज्ञान से उसे प्रवचन बताता है। ये वही व्यक्ति है जो पहले प्रथाओं की बात कर रहा था और अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहा था। अब वो फिर आयुब से कहता है, अध्याय 20 पद 2, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें जवाब देने में देरी नहीं करना चाहता। वो बोलने के लिए उतावला हो रहा था। अध्याय 20 पद 3 से लेकर 5 तक, मैंने ऐसी चेतावनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू ये नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तहीनों का आनंद पल भर का होता है। वो मानने को तैयार नहीं है। वो भी आयुब को दुष्ट और ढोंगी कहता ही जाता है। अध्याय 20 पद 6 से लेकर 18 तक, चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिए नाश हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वो कहां रहा। वो स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा। रात में देखे हुए रूप की नाई वो रहने ना पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे ना देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता ना रहेगा। उसके लड़के वाले कंगालों से भी विनती करेंगे और वो अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वो उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वो उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वो उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वो फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वो नागों का विष चूस लेगा। वो करैत के डसने से मर जाएगा। वो नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने ना पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वो उसे निगलने ना पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे ना मिलेगा। सोपार ये कहता है कि आयुब की बुराई ये थी। अध्याय 20 पद 19, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया, उसने घर को छीन लिया, उसको वो बढ़ने ना पाएगा। उसने कंगालों को पीसा, उनके घरों को छीना आदि सब उसके पाप है। अध्याय 20 पद 20 से लेकर 29 तक, लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वो अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। पूरी संपत्ति रहते भी वो साकेती में पड़ेगा। तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसको पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वो उस पर पड़ेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वो उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पिते से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वो ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई ना हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वो भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वो उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। उसके मित्र बार बार उस पर दोष लगाते हैं कि वो दुष्ट है, वो डोंगी है। वे एक ही राग आलापते हैं, तेरी सारी परेशानियों का कारण है कि तू पापी और कुकर्मी है। आज भी ऐसे मूर्ख है कि यदि आप संकट में हैं, तो वे आकर आपसे कहेंगे, भाई आप पश्चाताप क्यों नहीं करते, आप फिर से समृद्ध हो जाएंगे, आप पाप करना छोड़ क्यों नहीं देते, यदि आप धर्मी बन जाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। परंतु सत्य तो यह है कि धर्मी जन दुख उठाते हैं और दुष्ट फूलते फलते हैं। दुष्ट कष्ट उठाते और धर्मी फूलते फलते हैं, ये हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि धर्मी जन प्रायः दुख क्यों उठाते हैं। किसी के कष्ट उठाने पर अपनी राय देना उचित नहीं होता है। किसी बीमार व्यक्ति से ये कहना उचित नहीं है कि उसमें विश्वास नहीं है। ये मानना भी उचित नहीं है कि यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो आप बीमार नहीं होंगे। परमेश्वर विभिन्न दृष्टिकोणों से दर्शाता है कि हमारी बुद्धि और समझ के द्वारा हम उसके कामों को और समस्त प्रश्नों को समझ पाने में सक्षम नहीं है। आयुब की पुस्तक में एक मुख्य प्रश्न ये है, ईश्वर भक्त मनुष्य कष्ट क्यों उठाता है? इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में इस पुस्तक में नहीं है, परंतु निश्चय ही हमें ये आश्वासन और समझ प्रदान की गई है कि परमेश्वर हमारे जीवन का प्रभु है। इसलिए मुझे इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की आवश्यकता नहीं। मुझे जो भली भांति ये समझ लेना है कि सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है और मैं उसमें हूं। परमेश्वर मेरे जीवन को नियंत्रित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हमारी सहायता करें कि हम तेरे बारे में गलत बातें ना करें। हम किसी के संकट के समय में यह न सोचे कि हम उससे अधिक समझ रखते हैं और कारणों को अधिक जानते हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें, और यदि कोई भाई संकट में पड़ता है तो नम्रता की आत्मा में उसका पुनरुद्धार करें। यदि कोई भाई निराश है तो उसे ऊपर उठाएं और उसकी ओर अपना प्रेम और समझ भरा हाथ बढ़ाएं। हमें अपने जैसे मन प्रधान कर। हे प्रभु, आवश्यकताग्रस्त और शोषित वर्ग के लिए हमें करुणा से पूर्ण मन दे। यीशु के नाम में आमीन।